प्रांजल और शालू घर पर रोहन का इंतजार कर रही थीं। रात के लगभग 1 बज गए थे। प्रांजल शालू को सब बता चुकी थी। दोनों कमरे में चहलकदमी कर रही थीं और रोहन का इंतजार कर रही थीं। शालू चहलकदमी करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता प्रियंका का कुछ हो पाएगा निक के साथ। देखा नहीं, वो कितना खड़ूस है और उसके पीछे तो लड़कियों की लंबी लाइन है। वो अपनी प्रियंका को पसंद करेगा। तो क्या हुआ, प्रांजल ने कहा, सब हमारी प्रियंका दी जैसी ब्यूटीफुल तो नहीं है ना? आप ये मत बोलो, हमारी प्रियंका दी प्रियंका दी है, उसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं। माना अपनी प्रियंका ब्यूटीफुल है, बट वो भी कितना हॉट है, मैं तो उसे देखती ही रह गई। ऊपर से फेमस कितना है, उसके जैसा तो कोई दूसरा लड़का भी नहीं मिलने वाला दुनिया में। ही इज अमेजिंग। शालू निक के बालों में खो गई। कंट्रोल शालू दी कंट्रोल, प्रांजल ने उसे बालों से बाहर निकाला। आपकी शादी होने वाली है, आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। ओ हाँ, शालू अपने बालों को संभालने लगी। अरे यार, वो है ही इतना अच्छा, बाकी सीरियस मत लेना, मेरे लिए तो मेरा रोहन ही सब कुछ है। फिर उसने बाहर की तरफ देखा और कहा, ये रोहन अब तक नहीं आया, होप के सब ठीक हो और बात खराब ना बिगड़ी हो। मैं तो यही कहूंगी पूरी बात तो सॉल्व हो गई हो। वही तो यार, मुझे भी टेंशन हो रही है, प्रांजल ने अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। प्रियंका दी की जिंदगी में वैसे भी टेंशन कम नहीं है, चारों तरफ से उसे प्रॉब्लम ने घेर रखा है। अब ये चीज भी उसके लिए प्रॉब्लम बनी तो पता नहीं वो कैसे सब हैंडल कर पाएगी। दोनों बात कर ही रही थीं, तभी रोहन की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बालकनी की तरफ दौड़ी। रोहन गाड़ी से नीचे उतरने के बाद घर की ओर आ रहा था। उसे देखकर दोनों खुश हो गईं। रोहन जैसे ही उनके कमरे में आया, प्रांजल फौरन उसकी ओर गई और बोली, थैंक गॉड रोहन जी जो आ गए आप। आपकी वजह से मैं और शालूदी अब तक नहीं सो पाए, हमें काफ़ी टेंशन हो रही थी। रोहन एटीट्यूड और ईगो वाले अंदाज में बोला, ओ रियली, अगर ऐसा ही था तो इतना सारा रायता फैलाया ही क्यों? फिर वो नॉर्मल हुआ और बोला, और तुम लोगों ने जो रायता फैला रखा था उसे समेटने में टाइम तो लगना ही था। भगवान कसम, ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग की पूरी खिचड़ी पक गई। शालू रोहन के पास आई और उससे पूछा, अब तो सब ठीक है ना रोहन? मामला कैसे शांत हुआ, बताओ मुझे, तुम क्या करके आई ये भी बताओ। रोहन ने चेहरे पर मुस्कान दी और कहा, तुम लोगों को जानकर खुशी होगी कि अब सब ठीक हो गया है। प्रियंका की जो कुछ बात सामने आई थी वो बस गलत फहमियाँ थीं, उसका निवारण हो गया है। अब उन लोगों को हमारी प्रियंका से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो प्रांजल की तरफ मुड़ा और उसे कहा, मगर तुम भी बता देना चाहिए था, अगर सारी बात पहले से ही सामने होती तो ऐसा कभी नहीं होता, इतना रायता कभी नहीं फैलता। इससे पहले प्रांजल कुछ बोलती, प्रियंका जी वहाँ आ गई। उन्होंने आने के बाद सभी को देखते हुए कहा, भरे ही तुम लोग मॉडर्न हो गए हो, और अब के टाइम किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, पर ये सच में बहुत लेट हो गया है, इतनी देर तक जागना ठीक बात नहीं है। रोहन ने ये सुनते ही कहा, जी आंटी बस सोने जा ही रहे थे, मुझे भी यही लग रहा था, काफ़ी देर हो गई है। प्रियंका जी ने पूछा, खाना खाया? शक्ल देखकर लग नहीं रहा तुमने खाना खाया होगा। हाँ खा लिया, रोहन ने जवाब दिया। आप अब तक सोई नहीं? उसने सामने से पूछा। अब इन दोनों ने नहीं बताया, बट आई नो तुम नहीं आए हो अब तक, बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी, प्रियंका जी ने कहा। मुझे बस इसी बात की टेंशन थी तुम कहीं बिना खाना खाए ना सो जाओ, अब खाना खा लिया है तो चलो अच्छी बात है, अब जाओ सब सोने, रोहन पीछे मुड़ते हुए धीरे से बोला। कल बताता हूँ सब कुछ, कल बताता हूँ मैंने कैसे इस मसले को संभाला। जैसे ही रोहन और प्रियंका जी बाहर गए और शालू ने जाकर दरवाजा बंद किया, वैसे ही प्रांजल खुशी के मारे नाचने लगी। नाचते नाचते उसने शालू को गले से लगा लिया और फिर दोनों ही सोने के लिए चली गईं। रात को प्रियंका बाहर टेनिस ग्राउंड में टहल रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। तभी रॉन और जिन्नी की कार अंदर आई और वे दोनों उससे बाहर निकले। दोनों की नज़र प्रियंका पर पड़ी और फिर दोनों ही उसकी ओर आ गए। जिन्नी समझ चुकी थी मामला क्या है और उसे नींद नहीं आ रही। वो उसके पास आते ही बोली, आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं थी तो ये सब हो गया, अगर मैं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देती। प्रियंका सामने से बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी बता देना चाहिए था, तुम्हें सच का पता होता तो शायद तुम भी मुझसे दोस्ती नहीं करती। मुझे नहीं पता सबकी उनसे क्या दुश्मनी है, मगर मेरे कहीं भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थे। रॉन हंसा और हंसते हुए बोला, तुम जानती नहीं हो अभी जिन्नी को, ये किसी की नहीं सुनती है, बस जिसे अपना समझती है उसके लिए तो गॉड से झगड़ा कर लेती, वो तो फिर भी निक है, ये तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती और इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि ये तुमसे दोस्ती ना करती। जिन्नी ने भी इस बात के लिए हामी भरी, हाँ अब फिर ऐसे कभी मत बोलना, मैंने तुमसे दोस्ती कर ली तो मतलब कर ली। प्रियंका थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मगर अब दोस्ती का कोई फायदा नहीं है, मुझे जाना होगा यहाँ से, मैं खुद को सही प्रूफ नहीं कर सकती हूँ और ना ही मुझे लग रहा है कोई और रास्ता मुझे खुद को सही प्रूफ करने के लिए मिलेगा। मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर मैं एक जगह से निकलने की कोशिश करूंगी तो दूसरी जगह फंस जाऊंगी, अब मेरा यहाँ से जाना पूरी तरह से तय है। रॉन के चेहरे पर भी हल्की उदासी आ गई। मैं और जिन्नी ट्राई कर रहे हैं प्रियंका, बट निक ने सब कुछ बहुत प्रोफेशनली किया है, मामला कुछ हद तक सही तो हुआ है मगर अब सब उस पर ही डिपेंड करता है। जिन्नी रॉन के कहने की ठीक बात बोली, अगर वो अपनी तरफ से कंप्लीट वापस ले लेता है तो सब ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, हम ऐसे ही मिलकर रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, प्रियंका ने गहरी सांस लेने के बाद कहा। वो तो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि उनका बस नहीं चलता, वरना खुद मुझे इंडिया तक छोड़कर आते। जिन्नी प्रियंका के गले लग गई, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मैं भी।
दोनों कुछ देर तक गले लगे रहे। इसके बाद प्रियंका अलग हुई और जिन्नी से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें मिस्टर दत्ता से प्रॉब्लम क्या है, इतनी नफरत आखिर हुआ क्या है। जिन्नी कुछ बोलती उससे पहले रॉन ने उसे इशारे से मना कर दिया। जिन्नी ने इसे समझा और कहा, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी के लिए तुम्हें सोने जाना चाहिए। बस चाह ही रही थी, प्रियंका ने कहा और आरोही के कमरे की ओर जाने की तैयारी की। कल मिलते हैं, गुड नाइट, और कहकर कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद रॉन और जिन्नी भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। जिन्नी ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, तुमने प्रियंका को एल के बारे में बताने से मना क्यों किया? सभी बातें सामने आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता हम इससे भी कुछ छिपाना चाहिए। एक बात को छिपाने से मामला काफी बिगड़ जाता है, ये तो तुमने देख ही लिया है ना। ऐसे में अगर हम इस बात को छिपाएंगे तो ये चीज भी आगे जाकर मामले को बढ़ाएगी। अभी सही वक्त नहीं है जिन्नी सब बात बताने का, रॉन ने कहा, और मुझे लगता है हमें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जो भी है वो निक पर छोड़ देना चाहिए। जब तक निक खुद नहीं चाहता तब तक प्रियंका को इन सबसे दूर ही रखा जाए तो अच्छा है, जिन्नी बोली। प्रियंका और निक एक साथ आए तो ये बात गड़बड़ करेगी, रॉन बोला। मुझे नहीं लगता ये कभी होगा, उन दोनों के रास्ते अलग अलग ही रहने वाले हैं। ये बोलकर रॉन चला गया।
जिन्नी उसके बाद बोली, पर जिन्नी के होते हुए सब होगा। निक जब प्रियंका के साथ होता है तब मैंने निक की आंखों में वही खुशी देखी है जो वो एल के साथ होता था तब उसे होती थी। निक की खुशी के लिए जिन्नी कुछ भी कर सकती है। अगर हम सब सही रहे तो मेरा यकीन मानो वो दोनों पास आकर ही रहेंगे। जिन्नी वहां से अपने कमरे में सोने चली गईं। अंकित की मुलाकात होटल में एमा और एवा के साथ हुई। रात के वक्त दोनों वहां काम कर रही थीं। मुलाकात होते ही अंकित ने उनको वो सब बता दिया था जो उनकी जाने के बाद होटल रूम में हुआ था। एमा बोली, पता नहीं उस दत्ता ने और कितने लोगों के साथ गलत किया है, प्रियंका को भी नहीं छोड़ा, समझ में नहीं आ रहा ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। एवा ने कहा, बट प्रियंका सही साबित हुई, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, और वो निक को पसंद करती है ये तो और भी ज्यादा खुशी वाली बात है। मैं तो कब से चाह रही थी उसकी लाइफ में और कोई आए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, एल के दुख ने उसे अंदर से पूरा खोखला कर रखा है। अगर कोई और उसकी लाइफ में आएगा तभी निक असल में मिमिक बनेगा, वो निक जिसे हम 7 साल पहले जानते थे, हमेशा खुश रहने वाला, मौज मस्ती करने वाला, अंकित इस मामले में बोला। हाँ, और ये तब होगा जब निक प्रियंका को जाने से रोक ले, उसे नोटिस मिल गया है, ये बात अब किसी से भी छुपी नहीं है, मीटिंग में ये बात जाहिर हो गई थी, अब जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ निक पर है। एमा इस बारे में सोचते हुए बोली, देखते हैं हमसे कुछ बनता है तो हम भी कुछ करेंगे। एवा ने उससे कहा, प्लीज एमा तुम यहाँ निक को समझाने की कोशिश करो, अगर वो उसे रोकने के लिए नहीं मानता है तो उसे मनाने की कोशिश करो। एमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, कोशिश करूंगी। सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। सबके पास अब सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं था। रात के 2 बजने को आ गए थे, मगर ये रात अभी भी सबके लिए लंबी रात थी।